الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، چند دن سے بات اس پر ہو رہی ہے کہ جو چار لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے بارے میں، جن میں پہلے نمبر پر وہ لوگ تھے جو والدین کے فرما بردار تھے، اور دوسرے وہ جو کثیر الاولاد ہو اور آمدنی کم ہو لیکن اپنے اولاد کو وہ حرام سے بچاتے ہوں، حرام ان کو کھلانے یعنی بچتے ہوں. یہ اصل میں ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے، حلال اور حرام کا. سب سے پہلے ایک اصولی بات سمجھنی چاہیے. مثلاً ایک دریا ہو اور اس سے چار پانچ نہریں نکلتی ہوں، تو ظاہر ہر ایک نہر میں اسی کا پانی آئے گا. تو اسی طریقے سے ایک منبع ہوتا ہے احکامات کا، جہاں سے احکامات آ رہے ہیں. تو ظاہر سب ہمیں تو ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم یہ فرق کیسے کر لیں کہ جو نماز روزے کا جو احکام ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اور جو حلال رزق اور حرام رزق کے بارے میں آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں انسان سستی کرے. حالانکہ جو ارشادات مبارک ہے بالکل واضح ہیں. سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کا رزق حرام ہوتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو اب یہ احکامات چونکہ شیطان بھی جانتا ہے، تو اس وجہ سے شیطان جو ہے وہ لوگ بعض لوگ کو ایسی حالت اس طریقے ان چیزوں میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ ان کو نماز روزہ کی طرف تو آنے دیتے ہیں لیکن حرام رزق میں مبتلا کر کے ان کے تمام عبادات کو کہہ کے ضائع کر لیتے. اور اگر کوئی شخص نماز روزہ نہیں کرتا ہو تو اس کو تو کسی وقت تنبیہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یا دوسرے لوگ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کو بھی شوق ہو جائے اور وہ نماز شروع کر لیں. یہ تو آسان ہے، لیکن اگر کوئی اس چیز میں پھنس گیا کہ رزق اس کا حرام ہے اور نماز روزہ وہ کرتا ہے بلکہ بہت زیادہ کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہا ہے، اس وقت تنبیہ ہو جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا کنسیپٹ خراب ہے. تو جب تک اس کا کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک تو اس کو ہوش نہیں آئے گا. تو اس کے لیے بہت اہم ہے یہ سمجھنا کہ حلال رزق کمانا یہ بہت ضروری ہے اور حرام رزق سے بچنا بہت ضروری ہے. اس وقت حرام جو ذرائع ہیں ان میں جو بہت زیادہ یعنی مستعمل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تین ذرائع ہیں. ایک سود ہے جس میں عوام بھی مبتلا ہیں، اور ایک کرپشن ہے، مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دہی کر کے کہ جس میں ملاوٹ بھی آتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو بڑھایا جائے، سامنے کچھ ہو اندر کچھ ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. وہ تیسرا بڑا ذریعہ رشوت ہے. تو رشوت جو ہے یہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ تو ان لوگوں کو مل سکتا ہے جو کہ اس پوزیشن پر ہو، اور کرپشن وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کاروبار کرتے ہوں یا کوئی اس طرح ان کا سلسلہ ہو کہ وہ ان کے پاس لوگوں کا مال ہو، اس میں گڑبڑ کر سکتے ہو. تو तो ये तो कुछ पोजीशन के साथ ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये जो सूद है ये आम लोग भी कर लेते हैं। वो आम लोग किस तरह करते हैं, मसलन कोई शख्स है वो बहुत ज़्यादा यानी मतलब मेहनत करके पैसे कमाए सारे मतलब उम्र के, जैसे वो मुलाजमत कर ले जो भी, और आखिर में वो पैसे फिक्स डिपॉजिट रख कर उसका जो सूद है वो खाते रहें और अपने आप को माजूर समझते रहें। ये वाली बात है, अपने आप को माजूर समझना। अब ऐसे शख्स को तौफीक तौबा के होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर मतलब ये अपने आप को माजूर समझ रहा है, इसको गोया कि इसके गुनाह होने से वाकिफ है, लेकिन ये अपने आप को माजूर समझ रहा है, तो अपने आप को ये तसल्ली देगा और ये इस गुनाह में मुबतला नजर आएगा। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी बुराई चल रही है, या यूं कह सकते हैं कि जो गरीब अकवाम जिनकी वजह से मुसीबतों में मुब्तला है, उनमें सबसे बड़ी चीज़ सूद है। या IMF वगैरह, या यहूदी निज़ाम, बैंकिंग के सिस्टम्स, इसमें लोग जकड़े हुए होते हैं, उनकी जिंदगी अजीर्ण हो जाती है। मुझसे अपने दफ्तर के एक आदमी ने पूछा कि शाह साहब, मैं मकान बनाना चाहता हूं, तो मैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से मतलब कर्ज ले लूं? मैंने कहा तो सूद है। तो कहते हैं कि पैदा, मैंने कहा नहीं भाई, सारे मतलब है कि सूद पर तो कोई काम नहीं करना चाहिए। तकरीबन 12 साल के बाद मुझे कहते शाह साहब मेरे लिए दुआ करें, कुछ मसाइल है। मैंने कहा क्या मसाइल है? कहते वो जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज लिया था ना, उसके मसाइल है। मैंने कहा मैंने तो आपको रोका था। कहते हमारे एक पीर साहब हैं, उनसे हमने पूछा तो उसने कहा आप लोग मजबूरन ले रहे हैं ना, तो हमने कहा जी। उन्होंने कहा फिर ठीक है, मैंने कहा दुआ भी उनसे करवाओ। अब ये जो बात है मतलब, यानी उसने जो कर्जा लिया था किस लिए लिया था, मुसीबत के लिए ले, आसानी के लिए ले, ज्यादा आसानी के लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा मुसीबत। तो इसी तरीके इसका जो स्टार्ट है बड़ा शानदार होता है, इतने पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है कि बाद में भुगतना पड़ता है। असल में इसका जो बुनियादी कंसेप्ट है वो ये है सूद का, कि वो पैसे के जरिए से पैसे कमाते हैं, यानी पैसे में बस में उसमें मेहनत शामिल नहीं है, कोई और चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन वो पैसा बुनियादी चीज़ है जिसके जरिए से मजीद, जैसे मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए के ऊपर कोई फिक्स्ड अमाउंट 10% अगर लगा ले तो उसमें मेहनत तो नहीं है ना, बस वो ठीक है जो मतलब जो है ना वो 1 लाख जो भी है उस पर 10% आएंगे। तो उसमें ये होता है कि जो कि दरमियान में मेहनत नहीं है, तो लिहाजा वो मालदार आदमी के पास तो पैसा होता है, लिहाजा वो पैसे के जरिए से पैसे खींचता है, और गरीब आदमी के पास पैसा है जिसके पास नहीं है, जो सूद ले रहा है तो उससे पैसा जा रहा होगा ना, बिल्कुल साफ साफ बात है। मतलब ये कि उसमें तो कोई यानी ज्यादा सोचने की बात ही नहीं, अगर मालदार को फायदा पहुंचता है तो कहां से पहुंच रहा है, गरीब के नुकसान पर पहुंच रहा है ना, तो गरीब का नुकसान होगा तो फिर मालदार को फायदा होगा ना, तो इसका मतलब है कि जो सूद ले रहा है उसको नुकसान तो होगा। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि छुपी छुपी बात हो कि आदमी आदमी कह रहे कि ओ ये तो इसमें बड़ा रिसर्च चाहिए, मतलब मालदार को जो फायदा हो रहा है वो गरीब के नुकसान पर हो रहा है, तो लिहाजा जो सूद ले रहे हैं उनको नुकसान होगा। कार्ल मार्क्स ये कम्युनिज्म के मतलब बानी है, उसने अपने दी कैपिटल जो किताब लिखी है, उस हालांकि मुसलमान नहीं है और एक गलत निज़ाम का प्रचारक है, लेकिन उसने भी अपने एनालिसिस ये बताई है कि सूद से गरीब आदमी यानी वो जो उसके उसको नुकसान होता है, तो इस वजह से यानी वहाँ उन ममालिक में सूद नहीं था, तो इस वजह से जो है ना मतलब ये जो नासूर है पूरे मुआशरे का, इस के खिलाफ इंसान को डट के खड़ा होना होगा, ना तो सूद ले और ना सूद दे। इस तरह ना रिश्वत दे ना रिश्वत ले। रिश्वत लेने वाले जो होते हैं वो अपने पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं, और रिश्वत देने वाले जो होते हैं वो ना हक काम के लिए उसको करते हैं, या उसको मतलब अपनी सुस्ती की वजह से, मतलब आदमी अपने पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहता और सुस्ती की वजह से रिश्वत देकर वो काम को जल्दी करना चाहता है। तो रिश्वत देने वाला भी मुजरिम है, रिश्वत लेने वाले भी, क्योंकि रिश्वत देने वाले अगर ना हो तो रिश्वत लेने वाले किधर से आएंगे, वो तो ज़ाहिर उनको नहीं मिलेगा। तो ये बात मतलब जो है ना वो असल है कि रिश्वत ना दे ना रिश्वत ले, राशि वल मुर्तशी फिन्नार। तो इस वजह से हम लोग को जो हराम ज़राया मदनी के हैं वहाँ से जो है ना अपने आप को बचाना होगा, और ये जो सही तरीके है चाहे वो तोड़े क्यों ना हो, मतलब ज़ाहिर वो उसमें अल्लाह पाक बरकत देते हैं। ये बरकत एक ऐसी अजीब चीज़ है कि जिसको इंसान सोच मतलब जिसको एनालाइज नहीं कर सकता, इसकी एनालिसिस का टूल नहीं है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा मेरे पास एक साहिब आए, वो एक सूदी निज़ाम के सरबरा थे, और उसने मुझे खुद बताया कि मेरा तकरीबन 3 लाख रुपये तनख्वाह हो जाती है, यानी और तमाम फैसिलिटीज को मिला कर 3 लाख रुपये तनख्वाह है, लेकिन मेरी हालत है कि 9-10 तारीख के बाद मेरे पास कुछ नहीं होता, फिर मैं क्रेडिट पे जाता हूँ। अब अंदाजा करें 3 लाख रुपये तनख्वाह है और 9-10 तारीख के बाद वो उसको कुछ नहीं मिलता। तो मैंने कहा भाई इस चीज़ को छोड़ो, ये तो सूदी निज़ाम है। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उसने छोड़ दिया। इस तरह हमारे एक साथी के दोस्त हैं, वो एक सूदी बैंक में थे, तो उन हमारे दोस्त के कहने पर वो उसने सूदी बैंक छोड़ा और गैर सूदी बैंक में चले। गैर सूदी बैंक में उसकी तनख्वाह भी कम थी, लेकिन उसने कहा कि हमेशा मेरे 9-10 तारीख से ऊपर मेरे पास पैसे नहीं होते थे तनख्वाह के बावजूद, लेकिन जिस वक्त गैर सूदी बैंक में चला गया तो पहले ही दिन मेरे सेविंग हो गई, पहले ही महीने मेरे सेविंग हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बरकत कहेंगे। तो बरकत ऐसी चीज़ है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हलाल मदनी में बरकत होती है, और जो हराम मदनी है उसके अंदर बेबरकती होती है। हाँ जी, देखिए वो हमारे पश्तों में कहते हैं कि उख पकासिर शिव कासिर नहीं हुई ब्या, अगर एक ऊंट एक देले का हो जाए लेकिन अगर किसी के पास देला नहीं हो तो वो क्या करेगा। हाँ जी, तो इस तरीके से अगर अल्लाह ताला किसी का काम न करवाना चाहे तो आदमी क्या कर सकता है। उसके पास लाखों नहीं करोड़ों, उनके साथ करोड़ों के प्रॉब्लम आ जाएंगे। जिसके पास करोड़ों हैं उनके पास अरबों के प्रॉब्लम आ जाए तो हमेशा खसारे में रहेगा ना। और एक आदमी है वो जो है ना वो 100 रुपये कमाते हैं लेकिन उसका खर्च 50 रुपये कर लें तो उसके पास तो 50 रुपये की बचत होगी। तो ये जो ऐसी चीज़ है कि मतलब जो बरकत है वो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इस वजह से हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि अल्लाह पाक के भेजे हुए अहकाम उसके ऊपर आंखें बंद करके अमल करने में ही कामयाबी है। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह जल्ल शानु हमारे तमाम ज़रूरतों को जानता है, और अल्लाह जल्ल शानु अपने अहकाम की हिकमतों को भी जानता है। बफ़ौविदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिलिबाद, और मैंने सब कुछ अपने बारे में जो चीज़ें वो अल्लाह पे छोड़ दी, बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों का खूब निगहबान है। लिहाजा अगर इस तसव्वुर के साथ आदमी हराम आमदनी से अपने आप को बचाए और हलाल आमदनी सिर्फ इस्तेमाल करे तो इसमें ले इसके दोनों जान के खैरें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अत्तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अलैहि। Thank you.